તારીખ 21/3/1994 ના દિવસે પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા આગ્રામાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 9.
ક્યા એસા હૈ ક્યા તો કે હા ઇસમે ક્યા બાત હૈ શ્રદ્ધા કા પક્ષ હૈ હમે ફિર મેરે જો ઉત્તર જો આના ચાહિયે થા વો તો નહીં આયા फिर मैंने पंचाध्यायी उत्तरार्ध के 401 नंबर की जो गाथा है वो दिखाई है। उसमें लिखा है, ज्ञानम एकम साधनम साधनादि विधौचितः। ज्ञान एक ही साधन है, अगर साधन की विधि की मीमांसा की जाए तो मीमांसा मैंने गहरी विचारणा, साधन के विषय की मीमांसा की जाए तो ज्ञानम एकम साधनम, स्वानुभूति एक हेतुश्च तस्मात् तत्परमं पदम। एक स्वानुभूति का एक ही हेतु माने कारण है। उन्होंने ये गाथा पढ़ी, पढ़ते ही एक मिनट में जवाब दे दिया, अनादि अनंत ज्ञानियों को ऐसा ही होता है। पकड़ने क्या दृष्टि का सिद्धांत का बात तो समझ में आ गई कि हम क्या पूछना चाहते हैं। सीधा ही उत्तर दे दिया कि अनादि अनंत तीनों काल में ऐसा ही होता है, ज्ञानम एकम साधनम। फिर भी इस भाई को समाधान तो नहीं हुआ मेरा से। हमने सुझाव दिया कि आप गुरुदेव विराजते हैं, आप जाइए इसके पास, आपको समझ में आ जाएगी बात। गुरुदेव के पास गए, सब श्रद्धा को साधन बनाए या ज्ञान को साधन बनाए, ज्ञान पूर्वक श्रद्धा न होती या श्रद्धा पूर्वक ज्ञान होता है, क्या कारण कार्य क्या क्या नियम है। गुरुदेव ने बताया कि ज्ञानी ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धा होता है। देखो 17-18 गाथा की टीका गुरुदेव ने समय सार का आधार दिया, और आधार देते ही उन्होंने देखो यहाँ गधे के सिंह नहीं होते, जिसको जाना नहीं उसकी श्रद्धा होगी कैसे। फिर भी उनको समाधान नहीं हुआ, उन्होंने 143 नंबर का बोल गुरुदेव को दिखाया, साहब हमको यहाँ बात ऐसी बैठ गई है कि दृष्टि ही कारण है ज्ञान नहीं, तो हमको ऐसा लगता है कि वो सुगानी जी सही कहते हैं, ऐसा हमको लगता है। गुरुदेव क्या बोले, अच्छा तो तुम हमें समझाने को आए हो क्या। बोले ये ग्रंथ दिखा करके क्या तुम हमको समझाने को आए हो। बोला कि नहीं ज्ञान कारण है, दृष्टि श्रद्धान ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है। बोला कि नहीं बोला, फिर तो उसका विवाद करने की तो हिम्मत गुरुदेव के सामने तो चले नहीं किसी की। गुरुदेव ने आगे स्पष्टीकरण नहीं दिया, क्यों कि प्रश्न पूछने वाला जिज्ञासा में नहीं खड़ा था। उन्हें तो जो अपना माना था स्वच्छंदता से, अपनी मनमानी जिसको कहते हैं, उसकी पकड़ नहीं छोड़नी थी, तो उस पकड़ को पकड़ करने के लिए उनका आगम आधार अपना बता देते हैं। उनको ये भी ख्याल में नहीं रहा कि सुगानी जी कहां से पैदा हुए, इसके धर्म पिता तो थे गुरुदेव। अब गुरुदेव के सामने सुगानी जी के बात रखने का क्या मकसद है बताइए। तो बात तो ये सुगानी जी की नहीं थी, अपने पकड़ की थी। तो जीव क्या करता है, शास्त्र पढ़ करके अपना अभिप्राय को दृढ़ कर लेता है। शास्त्र पढ़ करके क्या करता है, अपना अभिप्राय को दृढ़ करता है। शास्त्रकार का अभिप्राय को वो नहीं समझता है। ये शास्त्र पढ़ने की गलत पद्धति है। ऐसा कभी स्वाध्याय का प्रकार होना नहीं चाहिए। और कारण कार्य के नियम को जाने बिना वस्तु के स्वरूप की सिद्धि नहीं होती। मुमुक्षु जीव को रात्रि भोजन त्याग का प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ करना चाहिए या नहीं? यदि पुरुषार्थ पर जोर लगेगा तो आत्मस्वरूप की प्राप्ति के जोर में कमी आएगी। यदि पुरुषार्थ पर जोर लगेगा तो आत्मस्वरूप की प्राप्ति प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ पर जोर लगेगा तो आत्मस्वरूप की प्राप्ति के जोर में कमी आएगी क्या? पहला प्रश्न यह है कि मुमुक्षु जीव को रात्रि भोजन का त्याग का प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले प्रश्न का उत्तर, यदि ऐसा प्रयत्न करने पर जोर लगेगा तो आत्मस्वरूप की प्राप्ति के जोर में कमी आएगी क्या? तो क्या है कि जोर लगना माने क्या? कि जो बाह्य क्रिया है, भोजन की जो बाह्य क्रिया है, उस बाह्य क्रिया पर उतना जोर लगे कि हम हमारे परिणाम को देखने को भूल जाए, तो अनुभव या आत्म प्राप्ति में विघ्न आ सकता है। लेकिन इतना जोर देने की आवश्यकता नहीं है। हम क्यों रात्रि भोजन नहीं करते हैं, कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए कि हमें तो पूर्ण निर्दोष होना है। जिसको पूर्ण निर्दोष होना है, ऐसे मुमुक्षु को मोटा मोटा दोष क्यों करना चाहिए? छोटा दोष भी जिसको नहीं करना है उसको मोटा दोष क्यों करना चाहिए? तो सहज ही ऐसा भाव रहेगा, सहज भाव रहता है तो अपने परिणाम पर ध्यान आता है कि हमारे परिणाम कैसे चलते हैं। जोर देने में एक संतुलन का नियम बनाना चाहिए। जितने भी बहिर तत्व है, उस बहिर तत्व और अंतर तत्व के विषय में संतुलन बिठाने से कोई प्रकार की आपत्ति नहीं आती है और मार्ग सरलता से प्राप्त होता है। जैसे कि आहार है वो नो कर्म है, वो बहिर तत्व है और कर्म का उदय अंतर तत्व है। जबकि कर्म का उदय बहिर तत्व है और आत्मा के विकारी परिणाम है वो अंतर तत्व है। आत्मा के विकारी परिणाम जब बहिर तत्व है, आत्मा के श्रद्धा ज्ञान चारित्र अंतर तत्व है। और आत्मा के श्रद्धा ज्ञान चारित्र शुद्ध परिणाम भी बहिर तत्व है, जबकि शुद्धात्मा अंतर तत्व है। तो उसी श्रृंखला में हमारे जोर देने का संतुलन बना रहना चाहिए। बहिर तत्व पर इतना जोर नहीं जाना चाहिए कि हम अंतर तत्व को भूल जाए। अंतर तत्व को मुख्य रख करके बहिर तत्व का ख्याल रहता है तो संतुलन बना रहता है। ऐसी स्थिति है तो हमारे परिणाम पर हमें ख्याल है तो सहज ही बाह्य क्रिया के दोष भी हट जाएंगे। जबकि रात्रि भोजन और आत्म प्राप्ति का सीधा कोई कार्य कारण संबंध नहीं है। क्या रात्रि भोजन और सम्यक दर्शन का सीधा डायरेक्ट कोई कार्य कारण संबंध नहीं है? क्योंकि ये चारित्र का दोष है और यहाँ श्रद्धान का प्रकरण चलेगा आत्म प्राप्ति में, तो श्रद्धा होने की बात मुख्य है। इसलिए कोई सीधा कारण कार्य का संबंध वहां नहीं रहता है।
किसका
तो श्रद्धा का दोष आ ही जाएगा, तो श्रद्धा का दोष आएगा। किसी भी प्रकार के दोष का पक्ष करना या अनुमोदन करना, उसमें दोष दृष्टि पनपती है, दोष दृष्टि तीव्र होती है, गुण दृष्टि खला खत्म हो जाती है। इसीलिए एक भी दोष का पक्ष नहीं करना है। क्या
क्या रखा है,
ऐसा करके दोष का पक्ष नहीं करना है। क्रियाकांड कुछ रखा नहीं है, वो बात भी सही है, फिर भी इसका पक्ष नहीं करना है। लेकिन हमारे संप्रदाय में ट्रेडिशन वो चल गई है, रिवाज वो चल गया है। अरे रात्रि भोजन करते हो, तब तो धर्म की बात आपसे सुनने ही नहीं है, ऐसा कहेंगे। धर्म की बात आप कर ही नहीं सकते हो, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन जो ट्रेडिशन होता है ना, वो ट्रेडिशन में दोष गुण हो जाता है, गुण दोष हो जाता है। आपको और दृष्टांत देख लो कि हमारे यहाँ रक्षाबंधन का पर्व आता है ना, तो मुनिराज ने 700 मुनि को बचाया। गुण है के दोष है, पर हम बनाते हैं, हम इसको क्या बनाते हैं, पर्व बनाते हैं, तो गुण रूप में बनाते हैं। तो एक ट्रेडिशन चल गई हमारी, एक रिवाज हो गया, तो दोष भी गुण रूप देखे जाते हैं। तो ये गुण दोष का जो तोलन करना, उसमें अध्यात्म दृष्टि क्या है और उसमें लोक दृष्टि क्या है, रिवाज क्या है, वो बात अलग अलग है। ऐसे एक रिवाज हो गया कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, जबकि यह सप्तम गुण स्थान की परिस्थिति है। रात्रि भोजन त्याग का व्रत कहाँ आता है, ये पंचम गुण स्थान में आता है, क्या आता है। और ये बात हम मुमुक्षुता में लेते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं, यथार्थतया देखे तो रात्रि भोजन त्याग कहाँ आता है, हमारे आगम में पंचम गुण स्थान में आता है, चतुर्थ गुण स्थान में तो आता ही नहीं। अब तो मुमुक्षुता की बात चलती है, तो इसलिए सीधा संबंध नहीं है इसका। फिर भी दोष का अनुमोदन करे तो श्रद्धा की मिथ्यात्व तीव्र तीव्र मिथ्या श्रद्धा हो जाएगी। तो बात ऐसी थोड़ी सूक्ष्म है। श्रावक पंचम गुण स्थान से कहलाता है, मुमुक्षु वो श्रावक नहीं है, नहीं पंचम गुण स्थान से कहलाता है। श्रावक है, श्रावक है। मुमुक्षु तो चतुर्थ गुण स्थान के नीचे भी मुमुक्षु कहलाता है, जो मोक्ष की कामना रखता है, मुख कामेण, यही मुमुक्षु है, मोक्षार्थी है वो। चौथे गुण स्थान वाले को श्रावक कहते हैं, लेकिन मुख्य तौर से नहीं कहते, मुख्य तौर से तो पंचम गुण स्थान वाले को ही श्रावक माना जाता है, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान वाला तिरिंच भी होता है, नारकी भी होता है, क्या करें। मिथ्यात्व की दशा में मंद कषाय हो और निवृत्त जीवन हो और उसमें बाह्य में त्याग व उपवास आदि स्वाध्याय के आत्मस्वरूप के लक्ष्य पूर्वक करे तो ठीक है या नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। इसमें एक विवेक कहाँ रखना है कि हमारे पास जो शक्ति है जितनी पर्याय में व्यक्त वीर्य गुण की जोर है, पुरुषार्थ है, हमें पूरा उद्यम से हमारे आत्मा में उसका प्रयोग करना है। उसमें सिर्फ कोई बचता है तो बाहर में भी हम उपवास आदि करें, व्रत करें, कसाई की मंदता के जो भी क्रियाएं हैं उसमें जाएं, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। सहज होना चाहिए, क्या सहज होना चाहिए, दमन करके नहीं, वृत्ति का दमन करके नहीं होना चाहिए, हट से नहीं होना चाहिए, सहज होना चाहिए। तो जो जिसके परिणाम सहज ही कसाई की मंदता रूप रहता हो, उसको कसाई की तीव्रता करने का उपदेश दिया जाता है क्या कि तुम पाप करो? जहां पूर्ण शुद्धि का ध्येय से उपदेश चलता है वहां कसाई की मंदता छोड़ करके कसाई की तीव्रता में ले जाए ऐसा कोई उपदेश का प्रकार हो सकता है क्या? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए सहज जिसकी कसाई मंद हो वो कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन पुरुषार्थ तो आत्म कार्य में ही लगाना है। साथ साथ ये कसाई की मंदता में हो जाए तो हो जाए, इससे कोई पाप में ले जाने के तो कोई उपदेश हो सकता नहीं है। प्रगट ज्ञानी पुरुष के प्रति बहुमान आदर भी, आदर की क्या सीमा है? उसकी कोई सीमा नहीं है। क्या प्रगट ज्ञानी पुरुष के प्रति बहुमान आदर की कोई सीमा नहीं है? बहुमान आदि पद के अनुकूल ही होता है या पद से ज्यादा भी हो जाता है? अब देखो, तीन पद है सजीवन मूर्ति के, तीन पद है, एक चतुर्थ या पंचम गुण स्थान वर्ती, एक छठे सातवें गुण स्थान वर्ती दूसरा, और तीसरा एक अरिहंत केवल तेरहवें गुण स्थान वर्ती। ये तीन का संपर्क मिलता है मुमुक्षु जीव को। अब इनके तीन पद है, ये अपने अपने उपादान के कारण से है, जबकि हमारे इस उपादान से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है उनके निमित्तत्व से। हमारा तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो तीनों में निमित्तत्व एक सा है। क्या है? सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में जो निमित्तत्व है वही निमित्तत्व सत्पुरुष में, चतुर्थ गुण स्थान धारी सत्पुरुष में होता है। तो हमें उपादान से क्या लेना देना? इनका अंतर जो फर्क है इससे हमें क्या लेना देना? हमारा तो निमित्तत्व से संबंध होता है, निमित्त नैमित्तिक। अगर ये बात कोई ठीक नहीं समझता है तो वह कहां खड़ा है हम बता दें उसको। कि जैसे कोई मनुष्य पानी, नदी के पानी के पूर में डूबता है, उसको निमित्त तिरने के लिए तीन प्रकार के मिलेंगे। एक तो अच्छा सा स्टीमर मिल जाए तो उसमें आराम से बैठ करके वो पार कर जाएगा। दूसरा मिले कोई होड़ी मिल जाए तो उसमें भी बैठ जा सकता है। और तीसरा कोई लकड़ा बड़ा जा पेड़ का थड़ जो प्रवाह में आता है वो मिल जाए तो उसको पकड़ करके भी वो किनारे पे आ जाएगा। अब ये तीनों में आया तो किनारे पर, तो तीनों में पूरा आया या अधूरा आया? बचा पूरा या बचा अधूरा? तो उसमें एक सा लाभ हुआ कि अलग अलग प्रकार का लाभ हुआ? बचने का, बचने का लाभ तो एक सौ होता है। अगर कोई मूर्ख इस वक्त ऐसा कहता है कि नहीं मैं लकड़े को नहीं पकड़ूंगा, होली आएगी जब मैं बैठूंगा, कस्टमर मिलेगी तो मैं बैठूंगा, तो मर जाएगा वो, क्या वो डूब जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि मेरा क्या स्थिति है, क्या हालत है, मुझे क्या करना चाहिए। तो जब केवली का जमाना नहीं, जब मुनियों का भी जमाना चला गया है, अब सब कुछ तीरने के लिए पुराने मित्र तो धारण करते हैं, तो हम उसकी अधूरी बहुमान करें, ये बात हमारी मूर्खता नहीं है तो और क्या है। हमको बचना है पूरा और बहुमान करना है अधूरा, ठीक, कोई न्याय की बात है क्या? माल तो लेने हैं पूरा और पैसे देने हैं आधा, प्रमाणिकता की बात नहीं है वो। और इसके लिए अगर पढ़ना हो तो कृपालु देव के 223 नंबर का पत्र है, वो हम आपको रात को पढ़ाएंगे, 223 और 254 दोनों में ये बात, 254 254। ज्ञानी को तो ऐसे ही मानेगा, इनके लिए तो उपसर्ग ही है, क्या कहना क्या, वो मानेंगे वो सही मानते हैं।
बहुमान करने वाला क्या करे,
बहुमान करने वाले को अपनी मर्यादा में रहना, ठीक। मर्यादा बाहर में, अंदर में तो जो भाव तो होगा ही होगा, भाव को बाहर में द्रव्य क्षेत्र काल भाव अनुसार विवेक करना,
बाहर की मर्यादा भी पसंद
है, बाहर में मर्यादा में रहना पड़ता है, अंदर में भाव तो कितना भी उछल सकता है,
बाहर में मर्यादा में है।
संभावना है, नुकसान की संभावना हो सकती है, अनधिकारी जीव के लिए शास्त्र शस्त्र बन पड़े, अनधिकारी माने क्या भाव है, अनधिकारी मैंने जिसको पात्रता नहीं है, जिसका दर्शन मोह का अनुभाग कम नहीं हुआ हो, तीव्र दर्शन मोह में वर्तता हो, ऐसे जीव को शास्त्र सिद्धांत कभी कभी नुकसान कर सकता है, स्वच्छंद जिसको है उसको अपने अभिप्राय से वो शास्त्र पढ़ेगा तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए शास्त्र तो ज्ञानी के आज्ञा अनुसार ही पढ़ना अच्छा है, क्योंकि अपनी योग्यता का अपने को ख्याल नहीं है, इसलिए सब प्रश्न हो गए। अनेक विशेषताएं हैं, फिर भी ज्ञान में जो ज्ञान संवेदन है वो एक रूप है, एक रूप होने से साधारण है, साधारण मैंने सामान्य है, फिर से कोई जीव रस का ज्ञान करता है तो उसे लगता है कि मैं रस चखता हूं, मुझे रस का स्वाद आता है, वास्तव में क्या होता है, वास्तव में तो उस जीव को अपना ज्ञान वेदन आता है, और
जानने की अपेक्षा
नहीं, वेदन की अपेक्षा से, आनंद उसका लक्ष्य उस रस पर होने से नहीं आता। अगर लक्ष्य अपना स्व पे होता, यानी जो ज्ञान वेदन है ये स्वरूप से बेदा जाता तो आनंद अवश्य आता है। परमागम सार के 733 नंबर के वचनामृत में गुरुदेव कहते हैं कि स्वरूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही आत्मा है। क्या कहते हैं? स्वरूप से अनुभव में, मैंने वेदन में, अनुभव में माने अनुभव, वेदन और भोगना, तीनों एकार्थ एक वाचक के वाचक है। इसका वाच्य एक ही है, अनुभव में लेना, वेदन में लेना या उसको भोगना। तो भ्रांति से जीव को परद्रव्य का अनुभव होता है, परद्रव्य का वेदन होता है, परद्रव्य को भोगता है, ऐसा लगता है। जैसे हमने मिठाई का अनुभव किया, ठंडेपन का अनुभव किया, गर्मी का अनुभव किया, वास्तव में वो कर नहीं सकते, हो भी नहीं सकता। ये गाथा बोलती है समय सार की 92, 93, 94, 95, चार गाथा है इस पर कर्ता कर्म अधिकार। तो ज्ञान है वो सिर्फ स्वयं को ही भेदता है, ज्ञान अन्य द्रव्य को, अन्य भाव को भेद सकता नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। इसलिए कहते हैं यहां कि समस्त विषयों के विशेषों है वो जानने में आता है, उस विशेषों में साधारण क्या है, सामान्य क्या है, कि एक ही संवेदन रूप परिणाम है, वही साधारण है, वही सामान्य है। और ये संवेदन रूप परिणाम क्या है कि जीव का स्वभाव है, ये अनेक रस को जाना उसको जीव का स्वभाव यह नहीं कहा, लेकिन एक संवेदन ज्ञान परिणाम रूप है, वही स्वभाव है, वही साधारण कहो, उसे सामान्य कहो, वही उसका स्वभाव है। ऐसा होने से आत्मा केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, क्योंकि वो रस वेदना परिणाम को पाता ही नहीं है, इसलिए वो रस चखता नहीं है, इसलिए वो अरस स्वभावी है, वो रस को चख ही नहीं सकता। द्रव्येंद्रिय से तो नहीं चखता, लेकिन भावेंद्रिय से भी नहीं चखता। जो ज्ञान सामान्य है उसमें वेदन है, यही आचार्य महाराज का यहाँ कहना है। और जो वेदन है बनेगा, सुनेगा तो सही, लेकिन उसने क्या सुना वो पता नहीं है। इसलिए जिसका लक्ष्य पर ऊपर है उसको तो वो ज्ञान वेदन है तो तिरोभूत हो जाता है। 15वीं गाथा में क्या कहा कि वो तिरोभूत हो जाता है। तिरोभूत का मतलब अभाव नहीं है, सद्भाव है। सद्भाव होने पर भी वो प्रकट रूप से वेदन रूप नहीं होता, प्रकट रूप से वेदन में नहीं आता, यही बात है। अब जो ये वेदन का विषय है और वही आत्म स्वभाव है, तो फिर स्वभाव व्यक्त हो गया कि नहीं व्यक्त हो गया? फिर स्वभाव व्यक्त है तो फिर उसको अनुभव में लेने में क्या आपत्ति है? आपत्ति उतनी है कि लक्ष्य पर ऊपर रहता वही। अगर लक्ष्य अपने पर आया तो वेदन आविर्भूत होकर के प्रकट अनुभव रूप होगा। लक्ष्य बदलने से प्रश्न ये आ गया कि लक्ष्य कैसे बदले। तो बात तो यह है कि लक्ष्य बदलने में भी वेदन ही आधारभूत है। वेदन तक हम पहुंचे तो हमारा लक्ष्य बदल जाता है, और लक्ष्य पूर्वक हम वेदन को आविर्भूत करें तो अनुभव हो जाता है, जिसमें आनंद आता है। फिर से लक्ष्य कैसे हो गया? लक्ष्य को हो, पहचान को हो, भावभाषण को हो, स्वरूप निश्चय को हो, अस्तित्व ग्रहण को हो, सब एक ही बात है। वाचक अलग अलग है, इसका वाच्य एक है। तो जब ये पहचान का विषय हो गया, लक्ष्य माने पहचान होना, तो पहचान कैसे होती है? परिचय से होती है। बिना परिचय किसी को पहचान नहीं होती। तो परिचय कैसे करें? कि ज्ञान तो हमारा परिणमन है और वो अनुभव में आ ही रहा है। हमारे अनुभव पर हम उपयोग को ले जाएं कि ज्ञान में क्या अनुभव में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञानी अनुभव में आ रहा है। हम हमारे ज्ञान में अपने आप को देखने का उद्देश्य को धारण करके क्या हमारे में ही ज्ञान अपने में ही स्वयं को देखने का उद्देश्य धारण करके अगर देखता है तो सूक्ष्म अनुभव दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान सामान्य जो जुट रहा है उसमें ज्ञान वेदन है। कहीं ज्ञान वेदन से लक्ष्य बनता है कि मैं ऐसा ही हूं, सीधा ही त्रिकाली का पहचान हो जाता है। क्या होता है? लक्षण से लक्ष्य की पहचान हो जाती है। ये वेदन लक्षण है। आया लक्ष्य लक्षण की चर्चा में प्रसिद्ध ही ज्ञान क्या लिखा है वहां अमृतचंद्र आचार्य ने लक्ष्य लक्षण की चर्चा में कि प्रसिद्ध ही ज्ञान ज्ञान मात्र से स्वसंवेदांश स्वसंवेदन सिद्धत्वात्। इतने शब्द पढ़े हैं लक्ष्य लक्षण की चर्चा में। वहां आचार्य महाराज ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि ज्ञान को जानने से प्रसिद्धि है, ज्ञान जानता है इसलिए ज्ञान प्रसिद्ध है, ऐसा क्यों नहीं कहा? प्रसिद्ध ही ज्ञान ज्ञान मात्र से स्वसंवेदन सिद्धत्वात्, स्वसंवेदन से उसकी सिद्धि है। यानी ज्ञान मात्र की सिद्धि माने प्राप्ति स्वसंवेदन से है। ना वेदन भूत लक्षण लिया है, जानने भूत लक्षण नहीं लिया है। ऐसा ज्ञान जानता भी है। तो जानना सत्य प्रकाशक होता है जबकि वेदन करना स्वतर वेदक नहीं होता है, पर को वेदा नहीं जाता, पर को भोग में भोगा नहीं जाता, पर का अनुभव किया नहीं जाता, यही कारण है। इसी कारण से यहाँ लक्षण को वेदन भूत लक्षण दिया है, क्योंकि ज्ञान मात्र लेना है, सामान्य ज्ञान लेना है, इसलिए वेदन से लक्ष्य होता है, वेदन से पहचान होती है, और पहचान पूर्वक ज्ञान सामान्य का आविर्भाव होता है, तो स्वसंवेदन रूप अनुभव आनंद सहित होता है, आनंद समेत होता है, उसी को ही सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की संज्ञा दी जाती है। 144 में कहा उसी को ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार से ये कार्य सिद्धि है। दूसरा प्रश्न ले रहे हैं, और प्रश्न है इसमें कोई? इस विषय में प्रश्न हो तो और चर्चा करो। गुण पर्याय की भिन्नता अभिन्नता किस प्रकार है? द्रव गुण और पर्याय में एक पदार्थ में द्रव्यत्व है, वो गुणत्व नहीं है, गुणत्व है वो पर्यायत्व नहीं है, पर्यायत्व है वो द्रव्यत्व नहीं है, इसलिए तीनों की भिन्नता है। और तीनों एक पदार्थ के अंग होने से अभिन्नता भी है, क्योंकि तीनों की तीन सत्ता नहीं पाई जाती, तीनों की एक सत्ता है, इसलिए तीनों अभिन्न भी है। अगर तीनों को सर्वथा भिन्न माना जाए तो तीन वस्तुएं हो जाएगी, तीन द्रव्य हो जाएगा, तीन पदार्थ हो जाएगा, है? तो पदार्थ वो कल्पना हो जाएगी, वस्तु स्थिति है ही नहीं, ऐसे ये कल्पना हो जाएगी। इस प्रकार से तीनों की भिन्नता भी है और अभिन्नता भी है। ऐसी वस्तु स्थिति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैन दर्शन के अलावा कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। जिसने वर्तमान में विश्व में धर्म संप्रदाय चले हैं, चल रहा है, उसमें जैन दर्शन को छोड़ करके तत्वज्ञान की विशेष रूप से चर्चा करने वाला कोई दर्शन है तो ये वेदांत दर्शन है। जैन दर्शन को छोड़ करके तत्वज्ञान की हजारों ग्रंथ जिसमें है ऐसा कोई दर्शन है तो ये वेदांत है। बाकी सब अन्य दर्शन में इतनी फिलॉसफी, इतना तत्वज्ञान कहीं नहीं है। वही वेदांत दर्शन में भी जैन दर्शन जैसे वस्तु स्थिति का विज्ञान विज्ञान नहीं है, साइंस नहीं है। क्यों? उनको भी वही शंका है कि एक पदार्थ में भिन्नत्व और अभिन्नत्व कैसे हो सकता है, एक पदार्थ में नित्यत्व और अनित्यत्व कैसे हो सकता है, एक पदार्थ में एकपना और अनेकपना एक साथ कैसे रह सकता है, कोई नहीं सकता। ये विरुद्ध प्रकार है, पदार्थ एक है और उसमें विरुद्ध धर्म कैसे हो सकता है, इसका विज्ञान उन लोगों के पास नहीं है। जबकि आत्मा में विरुद्ध धर्मत्व नाम की एक शक्ति है, इसलिए विरुद्ध धर्म को धारण करने का इसका स्वभाव है। और यहाँ ये दर्शन केवल केवल ज्ञान के अनुसार प्रतिपादित हुआ है, इसलिए इसमें संभव है, वरना इस बात को कोई देखिए, एक गुण में षडगुणानि वृद्धि एक समय में है, एक पर्याय में, बिना केवल ज्ञान वस्तु स्थिति का पता नहीं चलेगा। अगर अगुरु लघुत्व सिद्ध नहीं होता तो पदार्थ पदार्थ रूप नहीं रह सकता, अन्य पदार्थ रूप हो जाता है, गुण गुण रूप नहीं रह करके अन्य गुण रूप हो जाता है, पर्याय पर्याय रूप नहीं रह करके अन्य पर्याय रूप हो जाएगी। तो ऐसे केवल ज्ञान अनुसार जो हमारे तत्व ज्ञान के स्थापना है, निरूपण है, वो बराबर अध्यात्म दृष्टि से समझ में आती है। उन लोगों में ये समझने का क्षोभ नहीं था, वो बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोग वहां भी हुए हैं, व्यास है, शंकराचार्य है, वाल्मीकि है, बड़े बड़े थे वह, फिर भी उनको ये बात नहीं बैठी है कि भिन्नत्व भी हो गए और अभिन्नत्व भी हो गए, वो बात नहीं बैठती, एकपना हो गए और अनेकपना हो गए, वो बात उनको नहीं समझ में आती है। इसलिए शंकराचार्य ने ऐसा जैन दर्शन के ग्रंथ को पढ़ करके ऐसे बोले वो कि जैन दर्शन है श्यादवाद शैली से है, फिर भी उसमें कोई वस्तु स्वरूप का ठिकाना नहीं है, श्यादवाद तो संशयवाद दिखता है, श्यादवाद है तो संशयवाद है, वस्तु के स्वरूप का ठिकाना उसमें नहीं है, या तो वस्तु को एक कहो या अनेक कहो, या नित्य कहो या अनित्य कहो, दो बात एक साथ नहीं चलती, विरुद्ध है इसलिए, लेकिन है ऐसा। मूल कारण अपना आत्महित करने का ध्येय नहीं है, यही कारण है। क्या आत्महित करने का ध्येय है, उसको अल्प क्षोभ में वो बात समझ में आ जाती है, और जिसका ध्येय ऐसा नहीं हुआ उसी के कारण कितना भी तगड़ा क्षोभ हो बात समझ में नहीं आएगी। क्या 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 रहस्य भरा है इसमें, बहुत भरा है। प्रदेश को सत्ता कहो, प्रदेश सत्ता जो अस्तित्व गुण का पर्याय है वही प्रदेश है, प्रदेश कहो या सत्ता कहो, का एकत्व कहो, जैसे अनेकत्व है ऐसा एकत्व भी है, एकत्व कहो, अखंडत्व कहो, अखंडता कहो, पदार्थ की रवगुण पर्याय से पदार्थ की अखंडता खंडित नहीं होती, द्रव गुण पर्याय तीन भेद तीन खंड होने पर भी पदार्थ की अखंडता खंडित नहीं होती। जैसे ज्ञान में अनेक ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञान अनेक नहीं होता, पर्याय में प्रसिद्ध है वो, पानी में अनेक तरंग होने पर भी पानी के टुकड़े नहीं होते, तरंग अनेक है लेकिन पानी तो एक है सब में, बहुत आगे की बात है, अभी तो जैन होने का प्रारंभ भी नहीं है। जैन तो सम्यक प्रकार से जो विषय कषाय पर विजय पा लेता है उसे कोई जैन कहा जाता है। वो तो बहुत आगे की बात है, वो दिल्ली दूर है अभी। अब तो उसका प्रारंभ कैसे किया जाए, शुरुआत कैसे की जाए, वो बात है। चिद्विलास में कहा है कि कारण कार्य को अर्थात यथार्थ रूप में रूप से जानता है, उसने सब जान लिया। क्या आशय है? कारण कार्य है, उसको यथार्थ रूप में जानने से कहीं विपर्यास नहीं होता। वेदाभेद विपरीतता नहीं होगी, स्वरूप विपरीतता नहीं होगी, और कारण कार्य की विपरीतता भी नहीं होगी। और कारण कार्य को यथार्थ नहीं जाने तो वस्तु का स्वरूप को ही नहीं जानेगा। जैसे कि आत्मलाभ होने में श्रद्धा कारण है या ज्ञान कारण है? मुमुक्षु को आपका प्रश्न था ना सुबह, यानी जो प्रथम मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, प्रथम चरण में पहली सीढ़ी आती है, उसमें ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, या श्रद्धान पूर्वक ज्ञान होता है, ये बताइए। कारण कार्य की बात चल रही है अभी, दृष्टांत लेते हैं अभी। ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है, श्रद्धान पूर्वक ज्ञान कभी नहीं होता है। ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है, ऐसी बात है। जाने हुए का श्रद्धान होता है। इसके सामने ये कहा जा सकता है कि दोनों को एक ही काल में होता है। ज्ञान होता है पीछे, श्रद्धान नहीं होता है, या श्रद्धान सम्यक दर्शन होता है पीछे ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। और एक काल में होने के बावजूद भी ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है, श्रद्धान पूर्वक ज्ञान नहीं होता है। और श्रद्धा ज्ञान पूर्वक चारित्र होता है, चारित्र पूर्वक श्रद्धा ज्ञान नहीं होता। ये कारण कार्य की श्रृंखला है। अगर उस कारण कार्य को सही नहीं समझे तो बात उल्टी पुल्टी हो जाएगी। ये प्रश्न चला था द्रव्य दृष्टि प्रकाश के 143 नंबर के वचनामृत पेर से। ये प्रश्न गुरुदेव के सामने आया था। कार्य में प्रसरण में ज्ञान कारण है या दृष्टि कारण है, ऐसा प्रश्न उठा है। उत्तर दिया है, मुख्य तौर से तो दृष्टि ही कारण है, फिर ज्ञान को ही कहते हैं, दोनों साथ में ही है। दृष्टि प्रसर जाती है तो ज्ञान भी हो जाता है। प्रश्न, दृष्टि तो जानती नहीं, ज्ञान ही जानता है, आपने कैसे कहा? के सामने स्टेटमेंट के सामने प्रश्न उठा है। इस अपेक्षा से ज्ञान को भी कारण कहते हैं। देखो उत्तर बदल गया। मतलब उत्तर, परंतु यथार्थ में तो 11 अंग वाले को ज्ञान तो हो जाता है, दृष्टि नहीं होती है। इसी से यथार्थ में तो दृष्टि को ही कारण कहते हैं। अब इस उसमें क्या समझे, जब दोनों बात ज्ञानी कहते हैं, कभी दृष्टि को कारण कहेंगे, कभी ज्ञान को कारण कहेंगे, जिसकी मुख्यता करनी है उसको मुख्यता बताने के लिए ऐसा उत्तर देंगे। प्रश्न एक होने पर भी उत्तर दो प्रकार का आएगा और दोनों सही है, क्योंकि जब दृष्टि को कारण बताने हैं तब दृष्टि की मुख्यता दर्शानी है कि सम्यक दर्शन का प्रभुत्व क्या है। ये पूरा पूरा गुण शुद्ध हो जाता है तो उसकी मुख्यता और प्रधानता दी जाती है।
दृष्टि प्रधान है इसलिए पहले उत्तर में दृष्टि
क्या है कि ये गुण जो है वो पूरा पलटता है जबकि दूसरे गुण अधूरा पलटता है, और ये मूल का काम करता है क्योंकि आश्रय लेने में पूरी ताकत से वो काम करता है, दूसरे पूरा आश्रय नहीं लेता है, उधर भी जाता है उधर भी जाता है, आंशिक परिणमन करता है। तो उसकी प्रधानता मुख्यता दिखाने के लिए ऐसा भी कहें। जब प्रश्न सामने आता है कि दृष्टि तो कुछ देखती नहीं है, अंधी है, कैसे साधन बनाए, तो ज्ञान कारण है। ठीक, तो इसका कुछ स्पष्टीकरण दिया है हमने। यहां स्वरूप में एकाग्रता होने के विषय के प्रश्न का स्पष्टीकरण दिया है। क्या है प्रसरणा में ने क्या प्रश्न क्या चला है? त्रिकाली में प्रसरने में, मैंने त्रिकाली में एकाग्रता होने में, परंतु श्रद्धा ज्ञान के होने के विषय में स्पष्टीकरण नहीं समझना चाहिए। यहां किताब दे दो, थोड़ा सूक्ष्मता से ब्रैकेट में बात दिया है। प्रसरणा में लीन होना, तो प्रश्न करने वाले ने तो लीनता का कारण पूछा है। क्या श्रद्धा ज्ञान के विषय में प्रश्न ही नहीं चला है कि श्रद्धा का कारण कौन, ज्ञान का कारण कौन, लीनता का कारण कौन है, ये प्रश्न चला है। और हम लड़ाई करने बैठे हैं लेकिन श्रद्धा और ज्ञान के विषय में तो पहले तो ये हमारी अपेक्षा समझने में भूल हो गई। तो तत्व ज्ञान के विषय में तो बहुत सूक्ष्म उपयोग होने की जरूरत है, क्योंकि ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान होता है, यह त्रिकाली अटल सिद्धांत है। तो जिस मुमुक्षु भाई को ये प्रश्न उठा था कि दृष्टि ही कारण है, मोक्ष मार्ग में दृष्टि ही कारण है, ज्ञान कारण नहीं है आने में, तो द्रव दृष्टि प्रकाश का संपादन हमारा होने से पहली चर्चा तो हमसे हुई। हमने कहा कि बात ऐसी नहीं है, ज्ञान में ज्ञानी कारण होता है, तो उनको बात समझ में नहीं आई, स्वीकार नहीं हुआ। फिर हमने ये भी कहा कि पूज्य सुगानी जी से हमारा जो प्रत्यक्ष परिचय था, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका अभिप्राय यहाँ दृष्टि को कारण बताने का नहीं है। फिर भी उनको बात का स्वीकार नहीं हुआ। हमने ये भी एक प्रसंग बताया कि सिर्फ अभिप्राय नहीं जानते हैं, हम तो उसके साथ चर्चा भी कर चुके हैं, क्योंकि उनके बोलने की पद्धति ही दृष्टि प्रधान थी। तो एक समय पर हमने भी